हिंदी नवजागरण, दलित, स्त्री और प्रेमचंद। दलित स्त्री जीवन की कहानियों के संदर्भ में पृष्ठ संख्या 71। हिंदी नवजागरण की अवधारणा के प्रवर्तक रामविलास शर्मा माने जाते हैं। 1977 ईस्वी में उनकी पुस्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के प्रकाशन के साथ ही हिंदी नवजागरण की शुरुआत हुई। ध्यान देने की बात है कि इससे पहले 1943 में प्रकाशित अपनी पुस्तक भारतेंदु युग में उनका ध्यान नवजागरण की तरफ नहीं गया था। फिर 1966 में उनकी पुस्तक भारतेंदु हरिचंद प्रकाशित हुई और इसी के साथ उनकी एक और पुस्तक सन 57 की राज्य क्रांति प्रकाशित हुई। पर इनमें से किसी भी पुस्तक में हिंदी नवजागरण की चर्चा नहीं है। तमाम असहमतियों के बावजूद रामविलास शर्मा के नवजागरण संबंधी महत्वपूर्ण अवदान को विद्वानों ने स्वीकार किया है। रामविलास शर्मा की इस अवधारणा पर नामवर सिंह, मैनेजर पांडे, शंभुनाथ, वीर भारत तलवार, कर्मेंदु शिशिर एवं रवि भूषण जैसे प्रखर आलोचकों ने विस्तार से विचार किया है। हिंदी नवजागरण संबंधी विमर्श की विस्तृत चर्चा में न जाकर प्रेमचंद पर बात करना इस लेख का ध्येय है। रामविलास शर्मा ने प्रेमचंद पर आधारित अपनी आलोचना पुस्तक का नाम रखा है प्रेमचंद और उनका युग। जाहिर है कि वह महावीर प्रसाद द्विवेदी को हिंदी नवजागरण का जैसा नायक मानते हैं वैसा प्रेमचंद को नहीं। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण को सामंत विरोधी स्वर मानते हुए उसे चार चरणों में बांटा है। पहला 1857 का स्वतंत्रता युग ब्रैकेट में सिपाही विद्रोह, दूसरा भारतेंदु युग, तीसरा द्विवेदी युग और चौथा निराला का युग। संदर्भ ग्रंथ है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, लेखक है रामविलास शर्मा, प्रकाशन राजकमल प्रकाशन, पृष्ठ संख्या 18। प्रश्न उठता है कि रामविलास शर्मा ने अपने हिंदी नवजागरण विमर्श में प्रेमचंद को केंद्र में क्यों नहीं रखा, जबकि अपने समय में प्रेमचंद भारतीय समाज की ज्वलंत समस्या, वर्ण व्यवस्था और छुआछूत पर गंभीरता से विचार कर रहे थे। हिंदी नवजागरण पर विचार करते हुए प्रेमचंद के संदर्भ में प्रोफेसर मैनेजर पांडे लिखते हैं पृष्ठ संख्या 72 की इन्वर्टेड कॉमा ओपन, मुझे कई बार लगता है कि निराला के साथ या निराला के बाद मैं यह दुस्साहस करने की कोशिश कर रहा हूं कि हिंदी नवजागरण के आखिरी दौर को भी अगर वही माना जाए और प्रेमचंद को केंद्र में रखा जाए तो हिंदी नवजागरण के बहुत सारे ऐसे सवाल हमारे सामने आते हैं जो केवल निराला को रखने से नहीं आते। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ हिंदी नवजागरण, निराला और रामविलास शर्मा, संपादक भगवत रावत, पृष्ठ संख्या 34। हिंदी क्षेत्र में फूले, अंबेडकर और पेरियार जैसे दलित चिंतक नहीं हुए। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और दयानंद सरस्वती जैसे समाज सुधारक भी नहीं हुए। इन चिंतकों के प्रभाव में हिंदी के साहित्यकारों ने ही अपनी दोहरी भूमिका निभाई। तमाम विरोधाभासों के बावजूद इस तथ्य को भी बेहिचक स्वीकारा जाना चाहिए कि हिंदी क्षेत्र में सर्वाधिक प्रभाव गांधी के विचारों पर पड़ा। गांधी के विचारों का पड़ा। कथा देश में प्रकाशित अपने लेख प्रेमचंद हिंदी समाज और दलित प्रश्न में चर्चित आलोचक शंभुनाथ लिखते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा ओपन हिंदी समाज में प्रेमचंद और गांधी से पहले दलितों की समस्या का इतनी तीव्रता से अनुभव नहीं किया जा सका। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज संदर्भ ग्रंथ कथा देश जुलाई 2003 पृष्ठ संख्या 31। वे आगे लिखते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा ओपन हिंदी समाज में आर्य समाज की एक छोटी सी लहर छोड़ दें तो कोई व्यापक सुधारवादी आंदोलन नहीं चल सका। यहाँ फूले अंबेडकर पेरियार जैसे विद्रोही या प्रभावशाली दलित सुधारक नहीं हुए। हिंदी नवजागरण एक साहित्यिक जागरण था या राजनीतिक, वह फिर भी काफी अधूरा था। दलित काफी बाद में गांधी के नवजागरण का हिस्सा बने, फिर भी अस्पृश्यता मिट नहीं पाई। चारों तरफ यह एहसास जरूर पैदा हुआ कि उनकी जिंदगी में बदलाव जरूरी है, उन्हें आत्मसम्मान का इंसानी हक है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज संदर्भ ग्रंथ कथा देश जुलाई 2003 पृष्ठ संख्या 31। ऐसे परिवेश में प्रेमचंद ने अपने लेखन की शुरुआत से ही दलित समस्या पर जिस तरह विचार किया वह बड़ी बात है, और प्रेमचंद पर विचार करते समय हम इन तथ्यों को दरकिनार नहीं कर सकते। आश्चर्य की बात है कि इधर प्रेमचंद पर हमले तेज हो गए हैं। ब्राह्मणवादियों के निशाने पर तो वे शुरू से ही थे, मगर अब दलित भी उन ब्राह्मणवादी सामंत का मुंशी और न जाने क्या क्या होने का आरोप लगा रहे हैं। इस संदर्भ में विस्तार से न जाकर इतना बता दूं कि आलोचक वीरेंद्र यादव की तद्भव में प्रकाशित दो लेखों कुपाठ और विरोध के शोर में प्रेमचंद तथा प्रेमचंद के निंदक में विस्तार से ऐसे लोगों की छद्म मानसिकता को उजागर किया गया है। बहरहाल प्रेमचंद की दलित और दलित स्त्री विषयक कहानियों को तीन भागों में रखा जा सकता है। शुरुआत की कुछ कहानियों पर आर्य समाज का प्रभाव देखा जा सकता है। यह ध्यान देने की बात है कि 1911 में प्रकाशित कहानी दोनों तरफ से 1913 में प्रकाशित सिर्फ एक आवाज और 1924 में प्रकाशित सौभाग्य के कोड़े में सवर्णपात वर्ण व्यवस्था और छुआछूत का विरोध करते हुए पृष्ठ संख्या 73 अपनी जाति से विद्रोह करते हैं। 1920 के बाद राष्ट्रीय राजनीति में गांधी का प्रभाव पड़ने लगा था। मंदिर कहानी में गांधी के आंदोलन मंदिरों में अछूतों के प्रवेश का प्रभाव देखा जा सकता है। 1926 तक आते आते प्रेमचंद के दलित पात्र मुखर होने लगते हैं। तीसरा चरण वह है जिसमें प्रेमचंद मार्क्सवाद के आलोक में वर्ण व्यवस्था और ईश्वर पर प्रहार करते हैं, जिसकी परिणति कफन कहानी है। यह सही है कि दलित न होने के कारण वह भोगा हुआ यथार्थ नहीं लिख सकते। प्रेमचंद फैशन के तहत वर्ण व्यवस्था और छुआछूत पर विचार नहीं कर रहे थे, मगर अपने समय में जिस तरह गंभीरता पूर्वक वह इस समस्या पर विचार कर रहे थे, हिंदी नवजागरण काल में अन्यत्र दुर्लभ है। 1918 में प्रेमचंद ने लिखा कि इन्वर्टेड कॉमा ओपन हमारे समाज में अभी ऊंच नीच का विचार ज्यों का त्यों बना हुआ है। चमार अब भी अछूत है और डोम का स्पर्श करना तो हमारे लिए घोर पातक है। मनुष्य की आत्मा की श्रेष्ठता उसका गौरव हम भूल चुके हैं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज संदर्भ ग्रंथ प्रेमचंद विविध प्रसंग खंड 2 प्रकाशन हंस इलाहाबाद पृष्ठ संख्या 21। 1911 के मार्च में उर्दू पत्रिका जमाना में प्रेमचंद की कहानी दोनों तरफ से छपी थी। अछूत समस्या पर लिखी यह कहानी हृदय परिवर्तन का सहारा लेती है। प्रेमचंद ने जब यह कहानी लिखी तब गांधी और अंबेडकर राष्ट्रीय राजनीतिक क्षितिज पर उदित नहीं हुए थे। आर्य समाज का हिंदी क्षेत्र पर गौड़ प्रभाव जरूर था, जिसकी अनुगूंज भी इस कहानी में देखी जा सकती है। ध्यान देने की बात यह है कि इस कहानी में सवर्ण पात्र खुद को डी कास्ट करते हुए दलित का साथ देते हैं। हंस संपादक राजेंद्र यादव का कहना है कि दलित ही अपने अनुभव प्रामाणिकता के साथ अभिव्यक्त कर सकते हैं। यह सही है, पर क्या ब्राह्मण, राजपूत अथवा यादव सवर्णों द्वारा दलित होने पर होने वाले अत्याचारों और शोषण को नहीं लिख सकते? अगर लिख सकते हैं तो उस साहित्य को क्या कहा जाएगा? यादव जी को इस बात पर भी सोचना चाहिए। बहरहाल प्रेमचंद की कहानी दोनों तरफ से इस बात का भी प्रमाण है कि ब्राह्मणवाद के विरुद्ध कुछ सवर्णों ने आवाज उठाई थी। इस कहानी का नायक पंडित श्याम स्वरूप पटना के एक नौजवान वकील हैं। वे शाम में कचहरी से आकर बगल के सटे देहात में चले जाते हैं और वहां कहीं चमारों के साथ बैठे बातें कर रहे हैं, कहीं डोमों के बीच बैठे हैं। इनवर्टेड कॉमा ओपन। आखिर यहां तक नौबत पहुंच गई कि एक बार चमारों के चौधरी की लड़की की शादी में उन्होंने उनके साथ खाना भी खा लिया। इनवर्टेड कॉमा क्लोज। बस यह बात फैलते ही हंगामा शुरू हो गया। सवर्ण लोग पंडित श्याम स्वरूप पर थूकने लगे। औरतों के ताने सुन सुनकर परेशान हो चुकी पंडित जी की पत्नी कलेश्वरी देवी ने अपनी जान और प्यार का वास्ता देकर उन्हें दलितों की बस्ती में जाने से रोक दिया। जब कई दिनों तक वह दलित की बस्ती नहीं गए तो एक एक कर दलित भाई पंडित जी का हाल चाल पूछने उनके घर आ गए। दलितों की इस सहृदयता को देखकर कलेश्वरी का हृदय परिवर्तन होता है। इस बीच श्याम स्वरूप एक मुकदमे के सिलसिले में भागलपुर जाते हैं। वहां से लौटने पर वह देखते हैं कि उनके आंगन में लगभग 300-400 दलित स्त्री पुरुष जमा हैं। कलेश्वरी सबकी आव भगत में लगी थी। वह एक बूढ़ी दलित स्त्री का पांव छूकर आशीर्वाद ले रही थी। पंडित श्याम स्वरूप पत्नी में आए इस परिवर्तन को देखकर प्रसन्न होते हैं। प्रेमचंद यह बात भली भांति जानते थे कि दलितों को इस अवस्था में रखने में महाजनी सभ्यता की मुख्य भूमिका है। इसीलिए कहानी के अंत में वह दलित महिलाओं को श्याम स्वरूप से कहलवाते हैं कि इनवर्टेड कॉमा ओपन, इस खुशी में मैं 1,000 रुपए से 10 गांव में लेन देन की कोठियां खोलूंगा और तुम लोगों को बिना सूद के रुपया दिया जाएगा। तुम लोगों को महाजनों से रुपया लेने में 1 आना और 2 आना रुपया सूद देना पड़ता है। इन कोठियों के खुलते ही तुम महाजनों के बंधन से छूट जाओगी और इन कोठियों का इंतजाम उन्हीं के सुपुर्द रहेगा जिसने तुम्हें आज न्योत्या दिया है। इनवर्टेड कॉमा क्लोज। प्रेमचंद मानते थे कि अर्थव्यवस्था सामाजिक परिवर्तन की धुरी होती है। सूदखोरी नीति पर विचार करते हुए वे लिखते हैं, इनवर्टेड कॉमा ओपन, हमारी समझ में नहीं आता हम किस मुंह से दावा कर सकते हैं कि हम पवित्र और अमुक अपवित्र है। किसी ब्राह्मण महाजन के पास उसी का भाई ब्राह्मण आसामी कर्ज मांगने जाता है। ब्राह्मण महाजन एक पाई भी नहीं देता, उस पर उसका विश्वास नहीं है। वह जानता है इसे रुपए देकर वसूल करना मुश्किल हो जाएगा। उसी ब्राह्मण महाजन के पास एक अछूत आसामी जाता है और बिना किसी लिखा पढ़ी के रुपए ले आता है। ब्राह्मण को उस पर विश्वास है, वह जानता है यह बेईमानी नहीं करेगा। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ प्रेमचंद विविध प्रसंग खंड 2 हंस प्रकाशन इलाहाबाद पृष्ठ संख्या 449। हिंदू समाज की कुढ़म गजी पर प्रेमचंद ने लगातार प्रहार किया। उर्दू पत्रिका जमाना ब्रैकेट में अगस्त सितंबर 1913 के अंक में उनकी कहानी सिर्फ एक आवाज छपी थी। इस कहानी में उन्होंने स्वयं को सभ्य कहने वाले सवर्ण हिंदू बुद्धिजीवी की पोल खोलकर रख दी है। इस कहानी में दर्शन सिंह नाम का एक पात्र अपने परिवार के साथ चंद्र ग्रहण पर गंगा स्नान करने जाता है। स्नान करने के पश्चात वह एक जगह भीड़ देखकर फर्श पर बैठ जाता है। वहां एक सन्यासी अस्पृश्यता का भाषण देते हुए दो ढाई हजार लोगों को संबोधित करते हुए कहता है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, उनकी इस लज्जाजनक स्थिति का जिम्मेवार हमारे सिवा कौन हो सकता है? जिन लोगों की छाया से हम बचते आए हैं, जिन्हें हमने जानवरों से भी जलील किया है, उनसे गले मिलने में हमें त्याग और साहस और परमार्थ से काम लेना पड़ेगा। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ईसाई मिशनरियों का उदाहरण देते हुए प्रेमचंद सन्यासी के मुख से कहलवाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, आपने कभी ईसाई मिशनरियों को देखा है? आह, जब मैं एक उच्च कोटि की पृष्ठ संख्या 75 सुंदर सुकुमार गौरवर्ण लेडी को अपनी गोद में काला कलूटा बच्चा लिए देखता हूँ, जिसके बदन पर फोड़े हैं, खून है और गंदगी है, वह सुंदरी उस बच्चे को चूमती है, प्यार करती है, छाती से लगाती है, तो मेरा जी चाहता है कि उस देवी के कदमों पर सिर रख दूं, अपनी नीचता, अपना कमीनापन, अपनी झूठी बड़ाई, अपने हृदय की संकीर्णता मुझे कभी इतनी सफाई से नजर नहीं आती। वे ऐसी कुर्बानियां कर सकते हैं तो हम क्या इतना भी नहीं कर सकते कि अपने अछूत भाइयों से हमदर्दी से सलूक करें? इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। प्रेमचंद यह जानते थे कि अछूतों के साथ समानता का व्यवहार करना उनके ऊपर एहसान नहीं है। सन्यासी के शब्दों में, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, इसे खूब समझ लीजिए कि आप उनके ऊपर कोई रियायत, कोई मेहरबानी नहीं कर रहे, यह उन पर कोई एहसान नहीं है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। सन्यासी गला फाड़ कर आह्वान करता रहा, पर वहां बैठे हजारों लोगों में से एक का भी हाथ इस बात पर नहीं उठा कि हम अछूतों के साथ भाईचारे का सलूक करेंगे। भीड़ में बैठे लोगों पर व्यंग्य करते हुए प्रेमचंद लिखते हैं कि, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, वहां कौम पर जान देने वालों की कमी न थी। स्टेजों पर कौमी तमाशा खेलने वाले कॉलेजों के होनहार नौजवान, कौम के नाम पर मर मिटने वाला पत्रकार, कौमी संस्था के मेंबर, सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट, राम और कृष्ण के सामने सिर झुकाने वाले सेठ और साहूकार, कौमी कॉलेजों के ऊंचे हौसलों वाले प्रोफेसर और अखबारों में कौमी तरक्कियों की खबरें पढ़कर खुश होने वाले दफ्तरों के कर्मचारी हजारों की तादाद में मौजूद थे। आंख पर सुनहरी ऐनक लगाए मोटे मोटे वकीलों की एक पूरी फौज जमा थी, मगर सन्यासी के उस गर्म भाषण से एक दिल न पिघला, क्योंकि वह पत्थर के दिल थे, जिनमें दर्द और घुलावट न थी, जिनमें सदीक्षा थी मगर कार्य शक्ति न थी, जिनमें बच्चों की सी इच्छा थी मगर मर्दों का सा इरादा न था। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। कहानी का अंत इस तरह होता है कि दर्शन सिंह जोश में खड़ा होकर प्रतिज्ञा लेता है और वहां उपस्थित प्रबुद्ध जन उसके गंवारपन को कोसते हैं। सन्यासी सोचता है कि इन्वर्टेड कॉमा ओपन अफसोस, जिस मुल्क की रोशनी में इतना अंधेरा है वहां कभी रोशनी का उदय होना मुश्किल नजर आता है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। मराठी या बंगला नवजागरण के संदर्भ में यह ध्यातव्य है कि वहां सवर्णों ने स्त्री और दलित के मुद्दे पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हिंदी के क्षेत्र में ऐसे उदाहरण कम मिलते हैं। महाराष्ट्र की पंडिता रमाबाई ने कलकत्ता के दलित विपिन बिहारी से विवाह किया। 1849 ईस्वी में बंबई शहर में ब्राह्मणों तथा गैर ब्राह्मणों ने मिलकर परमहंस टोली की स्थापना की थी। इसके सदस्यों ने जाति बहिष्कार के विरोध में अभियान चलाया तथा गुप्त बैठकें कर उसमें एक साथ बैठकर गोमांस खाया तथा शराब पी। 1852 तक फूले ने 3 कन्या पाठशालाएं तथा अछूतों के लिए एक स्कूल खोला था। हिंदी क्षेत्र में प्रेमचंद से पहले ऐसे आंदोलन नहीं हुए। पृष्ठ संख्या 76। इस परिप्रेक्ष्य में प्रेमचंद के साहित्य में दलित प्रश्न पर विचार करें तो उनका महत्व और बढ़ जाता है। जाति विहीन समाज की स्थापना प्रेमचंद का मुख्य उद्देश्य था। वह इस क्रम में अनेक तरह से सोच रहे थे। वह अंतरजातीय विवाह को भी एक विकल्प के रूप में देखते थे। युवा दलित लेखिका अनीता भारती इस संदर्भ में लिखती हैं, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, प्रेमचंद जाति व्यवस्था तोड़ने का हल निकालते हैं और समाधान वही जो डॉक्टर अंबेडकर ने सुझाया था। रोटी बेटी का संबंध, आपसी खानबान का संबंध, जाति प्रथा तोड़ने का दूसरा कारगर उपाय अंतरजातीय विवाह है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ संधान अंक 2, अनीता भारती का लेख कफन और दलित स्त्री विमर्श, पृष्ठ संख्या 210। प्रेमचंद अपनी कहानी सौभाग्य के कोड़े ब्रैकेट में 1924 में इस विकल्प पर विचार करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आर्थिक दशा सुधरते ही जाति का बंधन ढीला पड़ने लगता है। कहानी का मुख्य पात्र नथुआ अनाथ है और राय साहब के यहाँ झाड़ू लगाता है। राय साहब ने उसे ईसाई के पंजे से छुड़ाया था। प्रेमचंद के शब्दों में, इन्वर्टेड कॉमा में ओपन, उन्हें ब्रैकेट में राय साहब को इसकी परवाह न हुई कि मिशन में उसकी शिक्षा होगी, आराम से रहेगा। उन्हें यह मंजूर था कि वह हिंदू रहे। उनके कमरों की सफाई मिशन की पाठशाला की पढ़ाई से कहीं बढ़कर थी। हिंदू रहे चाहे जिस दशा में रहे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। एक दिन नथुआ झाड़ू लगाते हुए राय साहब की बेटी रत्ना के पलंग पर सोने की इच्छा रोक नहीं पाया। तभी राय साहब आ जाते हैं और उसकी जमकर पिटाई होती है। रत्ना के कहने पर उसकी जान बचती है। नथुआ भागता है, भाग्य उसका साथ देता है। 13 वर्ष बाद वह संगीत का साधक बनकर और देश विदेश में नाम कमाकर जब पुनः लखनऊ लौटता है तो उसके रहने के लिए संगीत कंपनी द्वारा उसी राय साहब का वही बंगला खरीदा जाता है जिसमें वह झाड़ू लगाता था और रत्ना के पलंग पर सोने के कारण उसे अधमरा कर दिया गया था। नथुआ से नाथूराम होते हुए अब वह नारा आचार्य के रूप में मशहूर है। राय साहब अपनी गरीबी पर रोते हुए रत्ना की शादी आचार्य जी से कराने में सफल हो जाते हैं। आचार्य जी रत्ना को असलियत बताकर अपना बोझ हल्का करना चाहते हैं, पर रत्ना तो सब कुछ पहले से ही जानती है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, आचार्य जी ने चकित होकर कहा। रत्ना, यह जानकर भी तुमने? रत्ना, हाँ जानकर ही न, जानकर ही। न जानती तो शायद न करती। आचार्य, यह वही चारपाई है रत्ना, और मैं घाटे में। आचार्य ने उसे गले लगाकर कहा, तुम क्षमा की देवी हो। रत्ना ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी चेरी हूँ। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, पृष्ठ संख्या 77। प्रेमचंद ने गांधी को अछूतों के मंदिर प्रवेश पर समर्थन दिया, पर एक सीमा तक। 1934 में उन्होंने लिखा कि इन्वर्टेड कॉमा ओपन, यह बात अब तक किसी से छिपी नहीं है कि इन मंदिरों की आड़ में आज बड़े बड़े लज्जाजनक कृत्य हो रहे हैं। पुजारियों का, महंतों का और धर्म गुरुओं का जीवन भयानक विलासिता से भरा हुआ है। वे मंदिरों की आड़ में जघन्य से जघन्य कर्म करते नहीं शर्माते। ईश्वर को गाना सुनाकर खुश रखने के लिए उन्हें वैश्याएं चाहिए। इस बहाने वे अपनी राक्षसी कामना को पूर्ण करते और अपनी जीवन को विलास वासना और पतन के गड्ढे में डाल देते हैं। प्रतिदिन अनेक भोली भाली तथा धर्म भीरु युवतियां पुण्य कमाने के लिए मंदिरों में पहुंचती हैं और वे उन ईश्वर के प्रतिनिधियों द्वारा संकेत मात्र से गायब कर दी जाती हैं और उनकी काम वासना का शिकार बनती हैं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, संदर्भ ग्रंथ विविध प्रसंग खंड 3 पृष्ठ संख्या 160। मंदिर कहानी की सुखिया मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाती। उसका बेटा मर जाता है, फिर भी सवर्ण लोग पीट पीट कर उसे अधमरा कर देते हैं। सुखिया कहती है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, मेरे छूने से ठाकुर जी अपवित्र हो जाएंगे। मुझे बनाए तो छूत नहीं लगी, लो अब कभी ठाकुर जी को छूने नहीं आऊंगी। ताले में बंद रखो, तुम सबके सब हत्यारे हो। डरो मत, मैं थाना पुलिस नहीं जाऊंगी, मेरा न्याय भगवान करेंगे। अब उन्हीं के दरबार में फरियाद करूंगी। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। कुछ लोग यह आरोप लगाते हैं कि प्रेमचंद यथास्थितिवादी थे, उन्होंने दलित पात्रों को जानबूझकर कमजोर दिखाया है। उनके दलित पात्र हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं। इस संदर्भ में यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अंबेडकर का तब हिंदी प्रदेश में इतना प्रभाव नहीं था। हिंदी प्रदेश में दलितों की चेतना उस समय वैसी सामंत विरोधी या ब्राह्मण विरोधी भी नहीं थी। विरोध था मगर दुर्बल और कमजोर। दूसरी बात की प्रेमचंद नास्तिक थे, तो क्या उनके सारे पात्र नास्तिक होने चाहिए? कहानी का अपना अनुशासन होता है। सबसे बड़ी बात की प्रेमचंद सामाजिक यथार्थ को कहानी में ला रहे थे। 1914 में हीरा डोम की कविता अछूत की शिकायत सरस्वती में छपी थी। इस कविता में तमाम शिकायतों के बावजूद हीरा डोम ने विधर्मी होने को बुरा माना है। उन्हीं के शब्दों में, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, विधर्मी होकर मैं कौन सा मुंह लोगों को दिखाऊंगा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ऐसे में सुखिया अगर भगवान से फरियाद की बात कहती है तो उसे स्वाभाविक ही माना जाना चाहिए। मंदिर कहानी 1927 में छपी थी और 1932 में अछूतों के मंदिर प्रवेश पर प्रेमचंद लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, हिंदू जाति उन्हें यह अधिकार देकर केवल अपना कलंक दूर करेगी। असल समस्या तो आर्थिक है। यदि हम अपने हरिजन भाइयों को उठाना चाहते हैं तो हमें ऐसे साधन पैदा करने होंगे जो उन्हें उठाने में मदद दें। विद्यालयों में उनके लिए वजीफे करना चाहिए, नौकरियां देने में उनके साथ थोड़ी सी रियायत करनी चाहिए। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, संदर्भ ग्रंथ प्रेमचंद विविध प्रसंग खंड 2 पृष्ठ संख्या 445। पृष्ठ संख्या 78। ध्यान देने की बात है कि जिस आरक्षण को लेकर आज राजनीतिक दलों में होड़ मची है, उस पर प्रेमचंद 1932 में सोच रहे थे। सदगति कहानी का दुखी पंडित के यहाँ बेगार करते हुए मर जाता है, अथवा ठाकुर का कुआं की गंगी ठाकुर का कुआं के कुएं से पानी नहीं भर पाती। ऐसी घटनाओं से सवर्णों के प्रति आक्रोश बढ़ता है। दरअसल इन पात्रों की हार युगीन दलित आंदोलन का प्रतिबिंब है। हिंदी क्षेत्र में उस समय तक दलित आंदोलन में तेजी नहीं आई थी। प्रेमचंद यह मानते थे कि सुधार दलितों में नहीं बल्कि सवर्णों की जरूरत है। मंत्र कहानी के हिंदू महासभा का सदस्य पंडित लीलाधर चौबे भीलों को सुधारने के लिए चलता है, पर खुद सुधर कर उन्हीं लोगों के साथ रहने लगता है। वह कहता है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, मैं भला इन्हें क्या सुधारूंगा, पहले अपने को तो शुद्ध कर लूं, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। कफन कहानी पर यह आरोप लगाया जाता है कि प्रेमचंद ने दलितों की एक जाति को काहिल, निकम्मा और संवेदनशील बताया है। दरअसल इतिहास से कटकर निकल जाने की प्रवृत्ति के कारण ये बातें कही जाती हैं। दलित चिंतन का आधार ही अतीत की प्रताड़ना पर आधारित है, पर चूंकि प्रेमचंद सवर्ण जाति में पैदा हुए थे तो वे ऐसा कैसे लिख सकते हैं। कफन में प्रेमचंद स्पष्ट लिखते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा ओपन, जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी न थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलता से लाभ उठाना चाहते थे कहीं ज़्यादा संपन्न थे, वहाँ इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई आश्चर्य की बात न थी, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। घीसू और माधव के व्यवहार पर अपनी राय देते हुए वह आगे कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, हम तो कहेंगे घीसू किसानों से कहीं ज़्यादा विचारवान था, और किसान के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठक बाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला था, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ध्यान देने की बात है कि प्रेमचंद यहाँ किसानों के लिए विचार शून्य शब्द का प्रयोग करते हैं। जब किसानों में शोषण के विरुद्ध चेतना का निर्माण नहीं हुआ था तो मजदूर में चेतना ढूंढना खरगोश के सिर में सींग ढूंढने जैसा ही कहा जाएगा। अगर प्रेमचंद ने जाति सूचक शब्द चमार का प्रयोग किया तो दलितों को नीचा दिखाने के लिए नहीं बल्कि उनकी सामाजिक स्थिति को दिखाने के लिए। आज भी बिहार में चमार के बदले जाटव शब्द अनजान है, और देश की राजधानी दिल्ली में दिए जाने वाले जाति प्रमाण पत्र में भी चमार शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। प्रेमचंद्र के पात्र अगर असफल हैं, तो उससे सवर्णों की हेठी और दरिंदगी का पता चलता है। दूध के दाम का मंगल, जिसकी माँ का दूध पीकर जमींदार का बेटा सुरेश पला है, उसके लिए घोड़ा बनने से इनकार करता है, और बराबरी का हक मांगते हुए वह भी सवारी की बात करता है। मंगल की त्रासदी यह है कि वह अपने स्वाभिमान को बचा नहीं पाता और जूठन खाने पर मजबूर होता है। पृष्ठ संख्या 79। मंगल कुत्ता से कहता है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, लोग कहते हैं दूध का दाम कोई नहीं चुका सकता, और मुझे दूध का यह दाम मिल रहा है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इस कहावत के माध्यम से सवर्णों की अमानवीय निरंकुशता ही तो सामने आती है। जब आज भी दलितों का सामूहिक नरसंहार किया जाता है और दलित स्त्री को नंगा घुमाया जाता है, हमारे सामने गोहाना घटित होता है, फिर हम कैसे यह शिकायत कर सकते हैं कि प्रेमचंद के दलित पात्र बंदूक क्यों नहीं उठाते और नियति के शिकार होते हैं। इसका सबसे बेहतर प्रमाण दलित आत्मकथा हो सकती है, जिसमें दलितों के ऊपर सवर्णों द्वारा होने वाले जुल्म का प्रामाणिक चित्रण तो मौजूद है, पर संघर्ष और विद्रोह गौण है। दलित आलोचक तेज सिंह पहल -80 में प्रकाशित प्रेमचंद के दलित शीर्षक अपने लेख में लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, प्रश्न उठता है कि प्रेमचंद दलितों को ईश्वर भक्ति बनाकर क्यों उन्हें आस्थावाद की ओर ढकेल रहे थे, जबकि दलितों का पूरा चिंतन ईश्वर विरोध पर टिका हुआ है और अनास्थावादी दर्शन पर आधारित है। मंदिर और उसमें स्थापित ईश्वर रूपी देवी देवताओं पर दलितों की कोई आस्था नहीं रही और न ही विश्वास रहा है। दलित बहुत पहले ही ईश्वर की निरर्थकता सिद्ध कर चुके हैं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ पहल अंक 80 पृष्ठ संख्या 24। तेज सिंह की इस टिप्पणी में भावुकता का पुट अधिक है और यथार्थ कम। अगर आज की ही बात करें तो कितने दलित ऐसे हैं जो मंदिर नहीं जाते और पूजा नहीं करते, शायद उनका प्रतिशत बहुत कम होगा। पश्चिम बंगाल में 30 वर्ष से वाम पंथ का शासन है, पर वहां दुर्गा पूजा और आस्तिकता में कमी नहीं आई है। अगर इस तर्क को माने तो बंगाल के सारे लोगों को नास्तिक होना चाहिए था। दूसरी बात की, अभी गुजरात में हुए दंगों में दलितों की सक्रिय भागीदारी जग जाहिर है। ऐसे में प्रेमचंद पर यह आरोप लगाना कोरी भावुकता ही कही जाएगी। 1929 ईस्वी में प्रेमचंद की कहानी घास वाली प्रकाशित हुई। इस कहानी में दलित पात्र के विद्रोही तेवर को देखा जा सकता है। ध्यान देने की बात यह है कि विद्रोह की शुरुआत स्त्रियों द्वारा होती है। जमींदार चैन सिंह, जो शादीशुदा है, मुलिया को फंसाना चाहता है, पर मुलिया की निडरता और फटकार से वह आदमी बन जाता है। मुलिया चैन से कहती है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, अगर मेरा आदमी तुम्हारी औरत से इस तरह बातें करता तो तुम्हें कैसा लगता? तुम उसकी गर्दन काटने पर तैयार हो जाते कि नहीं? इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इतना ही नहीं, आगे बड़े घरों की पोल खोलते हुए मुलिया कहती है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, बड़े बड़े घरों का हाल जानती हूँ। मुझे किसी बड़े घर का नाम बता दो जिसमें कोई साइस, कोई कोचवान, कोई कहार, कोई पंडा, कोई महाराज न घुसा बैठा हो। यह सब बड़े घरों की लीला है और वह औरतें जो कुछ करती हैं ठीक करती हैं। उनके घरवाले भी तो चमारिनों और कहारिनों पर जान देते फिरते हैं। लेन देन बराबर हो जाता है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। पृष्ठ संख्या 80। प्रेमचंद के आगे पीछे दूर दूर तक कोई ऐसा लेखक नहीं है जिसने दलित और स्त्री समस्या पर इतनी गंभीरता से विचार किया हो। दलित साहित्य के इस हंगामे के दौर में भी ठाकुर का कुआं या सदगति जैसी कहानियों के वजन की यथार्थ परक कहानी क्यों नहीं आ रही है? प्रेमचंद के निंदकों के पास इसका कोई जवाब है? मैं निंदकों की बात कर रहा हूँ, आलोचकों की नहीं। प्रेमचंद की आलोचना हो सकती है, मगर उन पर दलित विरोधी होने का फतवा नहीं दिया जा सकता। दलित समस्या के समाधान के लिए प्रेमचंद का अपना मॉडल था। वह गांधी से प्रभावित होते हैं, पर उनसे मोह भंग भी जल्दी ही हो जाता है। दिसंबर 1932 के हंस में उन्होंने लिखा है कि, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, हरिजनों की समस्या मंदिर प्रवेश से हल होने वाली नहीं है। उस समस्या की आर्थिक बाधाएं धार्मिक बाधाओं से कठोर हैं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ प्रेमचंद विविध प्रसंग खंड 3 पृष्ठ संख्या 455। 1933 में हंस के मुख्य पृष्ठ पर उन्होंने अंबेडकर की फोटो छापी और लिखा, इनवर्टेड कॉमा ओपन, आपने अनेक कष्ट झेलकर तथा सतत प्रयत्नशील रहकर बाधाओं पर विचार प्राप्त की और अपनी विद्वत्ता से यह प्रमाणित कर दिया कि तथाकथित अछूतों को भगवान किसी असामान्य तत्व से नहीं बनाता। आप विश्व विख्यात महापुरुषों में से एक हैं। इनवर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ कथादेश पृष्ठ संख्या 29। शंभू का लेख प्रेमचंद, हिंदी समाज और दलित प्रश्न। हिंदी नवजागरण पर अथवा दलित विमर्श पर विचार करने के समय प्रेमचंद की इस भूमिका को रेखांकित करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। प्रेमचंद के अवदान को नकारना इस संदर्भ में साहित्यिक बेईमानी ही कही जाएगी।